अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, सज्जनों, वैष्णवियों सबके प्रति मेरी यथायोग्य अभिवादन। कल हमने संक्षेप में श्री राम और भरत के वार्तालाप के संबंध में भक्ति किसे कहते हैं इसको बतलाया था। इसके लिए बतलाया था जो एक भक्ति होती है, मुझे जो अच्छा लगता है उसके अनुसार में भगवान की सेवा करते हैं। सर्दी जब लगती है मुझे तो उनके घर में हीटर लगा देते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो ठंडा एसी लगा देते हैं। हमको जो अच्छा खाने में लगता है वही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। किंतु यदि हमको ये पता चले भगवान को क्या अच्छा लगता है किस समय, उसके अनुसार में यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार में उनकी सेवा की जाए तो ये सर्वोत्तम भक्ति है। भरत जी चाहते थे रामचंद्र जी बड़े पिता के बड़े लड़के हैं, वो राजगद्दी पर बैठने से प्रजाएं सुखी रहेंगी, मैं भी सुखी रहूंगा, माताएं सुखी रहेंगी, सीता जी को वनवास जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से जनक जी के भी राज्य के लोग राम का लौटना अच्छा समझेंगे, लौट करके राशि घासन ले ले। किंतु जनक जी ने जब कहा तुम्हारे इष्ट देव राम क्या चाहते पूछो, ये भक्ति है, तब उन्होंने बतलाया कोई जरूरत नहीं। ये भक्ति नहीं है। श्री रामचंद्र क्या चाहते हैं, उनको बन जाने में सुखी है अथवा राज सिंहासन ग्रहण करने में, ये पूछो। तब उन्होंने राम से पूछा, भैया क्या करने से आपको सुखी होगी ये बतलाइए। उन्होंने कहा, जे तेरी तो जीत हो गई है, अयोध्या का राज सिंहासन मैं लेता हूं, तुम मेरे प्रतिनिधि होकर के 14 वर्ष राज्य की प्रजाओं का पालन करो। बस उन्होंने यही कहा, यही भक्ति है। पहले वाली भक्ति भक्ति नहीं थी, अधूरी थी। जब श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ सिर पर धारण करके जब लौट गए तो वो अयोध्या में न जाकर के नंदीग्राम में गए और राम की भांति जटा रख करके, राम जैसे वनवास का फल मूल केवल खाते हैं और कुछ नहीं, ऐसे एक चटाई पर ऋषि मुनि की भांति बैठकर और वहीं से राज्य संचालन करते। एक समय कैकेयी मां भरत के पास में गई। भरत जी ने कहा, महारानी आप किस लिए आई हैं? माता नहीं कहा, महारानी किस लिए आई हो? उन्होंने जब बेटा मैं तुम्हारे पास में रहने के लिए आई, तुम मुझे मां कहो। नहीं, अब आप महारानी ही हमारे लिए रहे, मां का संबंध तो टूट गया, अपने पास में रखो। कहे नहीं, तो वो राज्य तो अयोध्या का राजमहल में रहना मुझे बिच्छू का डंक मारता है, तो तुम्हारे लिए वही ठीक है। उससे ही तुमने जो कुछ किया उसे तुम्हारे पापों का पाप दूर हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। वही प्रायश्चित वही रह करके करो। कितने कठोर थे भगवान का जो भजन, भगवान के सुख में जो बाधा देता है उसकी यही गति होती है। ये याद रखो, जो भगवान का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है, हमारा प्रिय नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उनको लौटा दिया और वो लौट गई और बड़ी दुखी हुई। किंतु भरत ने मैया नहीं कहा, अपने पास नहीं रखा। इसके पश्चात में उनकी पत्नी आई, श्रुति मांडवी। बोली, जे मैंने क्या दोष किया? श्री रामचंद्र जी तो अपनी पत्नी सीता को लेकर के गए हैं, मैं भी उसी तरह से वनवासी बनकर के आपकी सेवा करूंगी। ओ, सेवा करनी चाहती हो तो देखो, हमारी सेवा तब होगी जब अयोध्या में रह करके माँ कौशल्या की सेवा करके उनको सांत्वना देगी, यही मेरी सेवा है। वो भी लौट गई, वनवास में की तरफ में रहने लगे। इधर रामचंद्र जी चित्रकूट से दंडकारण्य गए। वहां पर जाने पर सबसे पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। वहां देखा राम लक्ष्मण सीता तीनों गए, देखा उनके आश्रम में सिंह और हरिण, बाघ हरिण बकरी सब एक साथ में एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता, कोई किसी से डरता नहीं, और वहां पर राक्षस लोग उस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते कोई भी, और वहां पर सब प्रकार के फल वृक्ष फूल वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे, तरह तरह के चीज थे, किसी चीज का अभाव नहीं था। और यहीं पर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ में यज्ञ करते और सब काम करते। जब रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी का जो हो यही राम ने कहा यही अगस्त ऋषि का आश्रम है, यहाँ कप किसी का किसी से विरोध नहीं रहता, कोई बुरे विचार बुरे राक्षस इत्यादि आ नहीं सकते हैं। आश्रम में प्रवेश किया, अगस्त ऋषि को भगवान स्वयं होकर के भी अगस्त को प्रणाम किया। भगवान की यही नीति है, ऋषि मुनि ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं इस लीला में। प्रणाम करने के बाद में ऋषि ने कहा जे देखो मैं तीनों कालों को जानता हूं, भविष्य में क्या होगा भूतकाल में क्या हो गया है, तुमसे रावण का युद्ध होगा मैं जानता हूं, इसलिए तुमको कुछ अस्त्र शस्त्र बाण इत्यादि देना चाहता हूं, इसलिए जितने अस्त्र शस्त्र थे उसका मंत्र के साथ में आवाहन और उनको चलाना दिया, अक्षय तूण दिया जिसमें बाण रहते हैं कभी नहीं खाली होते, और धनुष दिया जो कभी टूट या कट नहीं सकता, और एक स्पेशल बाण दिया जिससे कि रावण का वध हो सके। तत्पश्चात देकर के रामचंद्र जी वहां से पूछा मैं दंडकारण्य में कहां रहूं, तो आप सब जगत के लोगों के हृदय को जानते हैं और हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है मैं बतलाता हूं, दंडकारण्य में रहिए, गोदावरी जी का तट है, निर्मल पानी बहता है, वहीं पर पांच बट के वृक्षों की अद्भुत छाया है जिसको पंचवटी कहते हैं, और वहीं निकट में गोदावरी बहती है, वन बड़ा सुहावना है, आप वहीं पर रहे। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को लेकर के पंचवटी में गोदावरी के तट पर आए, लक्ष्मण जी ने वहां पर कुटी बनाई और उसमें वो लोग रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में रावण की बहन शूर्पणखा बड़ी सुंदरी वेश बना करके आई, बड़ी सुंदर, अपने राक्षसी वेश को हटा दिया और बड़ी सुंदर रूपवती युवती बन गई, राम के निकट में आई। ओहो मैं हे राम मैं तुम्हारे पास में आई हूं, इस जगत में मेरे समान कोई सुंदरी नहीं और तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, बड़ी अच्छी जोड़ी बैठेगी, तुम हमसे विवाह कर लो। रामचंद्र जी ने कहा जी हमारी तो ये विवाहिता पत्नी सीता है, हमारा भाई है, इस पत्नी साथ में नहीं है, इससे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी के पास में गई, बोली जे तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत सुंदरी हूं। उन्होंने कहा जे देखो मैं तो राम का दास हूं, सेवक हूं, तुम मेरे साथ में शादी करने से तुम दासी हो जाओगी। अच्छा है, राम तो और कितनी शादी कर सकते हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, वो तुमसे एक शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर रामचंद्र जी के पास गए, मैं आप ही से शादी करना चाहता हूं, आप तो बहुत सी शादियां कर सकते हैं। उन्होंने कहा जैसे देखो मैं एक पत्नी बतधारी हूं, वही लक्ष्मण के पास गया, अब तो क्रोधित हो गई, ये उसके पास में हमको टरकाते हैं, बस काजे से इस स्त्री को मैं खा जाती हूं तब तुम समझेगा। वो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, रामचंद्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट लिया, काटते ही भयंकर रूप धारण किया, और वहां से अपने भाई खरदूषण के पास में गई। खरदूषण रावण के भाई थे नाते में, देखो तो तुम्हारी भाई का नाक काट लिया, राम के पास में बड़ी सुंदरी स्त्री है, वो तुमको देने के लिए मैं गई थी, किंतु उन्होंने नाक कान काट लिया, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है वीरता को, और नहीं तो बदला लो। इधर में रामचंद्र जी ने सीता से कहा जी देखो हमको बहुत सी लीलाएं करनी है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि को मैं तुम्हें अग्नि में तुमको समर्पित कर रहा हूं, जब तक लीला नहीं समाप्त हो जाएगी तब तक तुम अग्नि तुम्हारी रक्षा करेगा गिरे देवता। यह करके वहीं पंचवटी में एक नीचे स्थान है, पंचवटी में नीचे घर के भीतर, और वहीं पर रामचंद्र जी ने अग्नि को सौंप दिया, अग्नि ने उनको रख लिया। इसके बाद में खरदूषण सुनते ही उसका नाक कान कटा हुआ देख करके अपनी 14,000 राक्षसी सेनाओं के साथ में आकर के आक्रमण कर दिया। राम ने बाणों से खरदूषण सबको मार डाला, 14,000 सेनाई नष्ट कर दी। खर में होता है गधा, धेनुकासुर, कृष्ण लीला में धेनुकासुर था ना, यही यहां पर खर हुआ है। खर माने गधा और दूसरा माने पाप। कृष्ण लीला में अघासुर नाम का जो पाप था, अघ माने पाप, अघासुर, वही यहां पर दूषण हुआ है। खर और दूषण को बिना समाप्त किए हुए अज्ञान को और पापों को नहीं दूर करने से भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान की आराधना नहीं होगी, इसलिए उनका मारना जरूरी था, इसलिए रामचंद्र जी ने उन्हें मारा। अब तो जब देखा जी खरदूषण मारे गए, रावण के पास में गई, भैया हमारे नाक कान को काट लिया, किस लिए? उसके पास में सीता नाम की एक बड़ी सुंदरी स्त्री है, मैं तुमको तुमको देने के लिए, उसको लाने के लिए मैं गई थी, ये पकड़ करके लाऊंगी, और इतने में हमारा नाक कान काट लिया, अब तुम इसका जरूर बदला लो, नहीं तो तुमको धिक्कार है। राम कह रहे ठीक ठीक। विभीषण ने कहा, परामर्श दिया, सोच विचार करके काम कीजिए, इसने जरूर कुछ किया होगा राम का, इसलिए उन लोगों ने नाक कान काटे, ऐसे नहीं, बकवास मत करो, चुपचाप रहो। विभीषण को डांट दिया, उनकी परामर्श नहीं माना, उनका भाई भी था मंत्री भी था, विभीषण सब समय अच्छा परामर्श देते, किंतु वो नहीं मानता। इसके बाद में वो मारीच नामक उसके उसकी स्त्री के पति थे एक मल्यवान, मल्यवान ने कहा जे भाई मैं आपको परामर्श नहीं देता जे राम सिंह की सीता को हरलाओ और ये सब मत करो, शांति पूर्वक बैठो, उसने दोष किया इसलिए काटा, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, हजारों राजा लोग जिसको उठा नहीं सके धनुष को, एक सेकंड में धनुष को उठा दिया, उसके पैर के छूने से अहिल्या तर गई, साधारण मत समझो। तब तो भी नहीं माना, मारीच से बोला देखो तुम हमारे हाथ से मरना चाहते हो या राम के हाथ से? उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ से नहीं मरना चाहता, तब तो तुम सोने का हिरण बनो और बन करके राम सीताराम के पास में जाओ, और उस समय सीता जी मुझे जीवित या मरे हुए लेने के लिए राम से जीत करेंगी, उस समय में तुम सोने का हिरण का रूप धारण करके भागना, और जब दूर जाना तुमको मारेंगे तो हाँ लक्ष्मण कह करके पुकारना, लक्ष्मण जाएंगे, मैं उन सीता को चोरी करके ले आऊं, लक्ष्मण के रहते हुए मैं नहीं ला सकता। यही हुआ, रामचंद्र जी उस हिरण के पास में देखा सोने का हिरण, सीता जी ने कहा प्रभो ये सोने का हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ लाइए तो मैं ये कैकई माता को उपहार दूंगी, और यदि जीवित नहीं मिला तो इसका मृगछाला लेकर के भरत जी को दूंगी। बहुत जीत किया। लक्ष्मण जी ने कहा ये कदापि हिरण नहीं हो सकता, कदापि मैं समझ रहा हूं यह राक्षसों की चाल है। राम ने कहा जे राक्षस होकर के ही मेरा क्या कर लेंगे, वो तो चाहते थे ऐसा ही, इसलिए परामर्श न मान करके लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना, मैं इस हिरण को जल्दी से जीवित या मार करके जरूर पकड़ करके आता, किसी हालत में इसको छोड़ना मत। राक्षस चारों तरफ में घूमते हैं। लक्ष्मण जी कहा आपका आदेश मैं पालन करूंगा। रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे दौड़े और जब बाण मारा बहुत दूर लेकर के चला गया बाण मारे तो हा लक्ष्मण बस इतना ही कहा और मर गया। मरा तो राक्षस बन करके मरा। लक्ष्मण जी और सीता जी ने सुना, सीता जी ने कहा भाई लक्ष्मण जल्दी जाओ, राम पर विपत्ति पड़ी है और नहीं तो मारे जाएंगे, जल्दी जाओ। उन्होंने राम को मारने वाला जन्म पृथ्वी में नहीं लिया है, कोई भी देवता असुर गंधर्व राम को नहीं मार सकते हैं, मैं जानता हूं, आप शांत रहें। ओ मैं जानता हूं तुम भरत के इच्छा पूर्ण करने के लिए भेष बदल करके मेरे पास में आया है, जयराम जी मारे जाएंगे और तुम सोचते हो कि मैं सीता जी को लेकर के अपने पास रखूंगा, ये कदापि नहीं, मैं प्राण मारा चला जाएगा तुम्हारे साथ में मैं नहीं रहूंगी बल्कि अग्नि में शरीर को जला दूंगी। कहते जी आप तो मेरी मां हैं और आप ऐसा मेरे लिए कह रही हैं, जल्दी जाओ और नहीं तो तुम मुझको ऐसा ही करना चाहते हो। लक्ष्मण जी ने ठीक है जाते हैं और धनुष से लेकर बाण से एक कुटी के चारों तरफ में लाइन दे दी, रेखा बना दी, जैसा भी हो आप इसके इसको पार मत करके ले जाना। चले गए और वहां पर देखा कि राक्षस यहां पर पड़ा हुआ है। राम ने कहा अरे तुम सीता को छोड़ करके चले आए, उन्होंने हमको ऐसी गालियां दी, सज्ज करना असंभव हो गया, इसलिए मैं आया, मैं जानता था कि आपको कौन मार सकता है। उन्होंने कहे जो होनी थी सो हुई। इधर में रावण सन्यासी का वेश धारण करके दंड लेकर के बड़े बड़े जटाओं को लेकर के वहां पर पहुंचा, बोला भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। सीता जी बेफितर में थी, उन्होंने कुछ घर में जो फल फूल था उसको लेकर के और हाथ से उस जो रेखा थी उसके बाहर में कर दिया। सीता जी आई ने ओ तुम हम उसके भीतर में जाने की चेष्टा की और जहां ही जाता है त्यों ही रेखा पर पैर देता है, आग भभक उठती है। इधर उधर बहुत देखा उससे भी भीतर में नहीं जा सका। कुछ लोग अनुसंधान करते हैं कि उस रेखा में क्या थी जो आग या बिजली निकल जाती थी, ये भारतीय कला है ने? ये सब लोग भारतीय लोग पहले जानते थे अब भूल गए हैं। फिर रावण ने कहा ऐसी मैं भिक्षा नहीं लेता बंधी हुई, या तो आ जाओ ना तभी संपात देते हैं तुम्हारा राम मारा जाए। अच्छा ना ना हमको अभिशाप मत दो जैसे हो, बस यही लाइन पार किया और बस पकड़ करके उसका विमान था पुष्पक विमान बैठा करके जबरदस्ती लेकर के चला गया। रास्ते में जटायु को भी मारा और सब भी। सीता जी ने अपने गहने की स्किंदा में बानरों को दे करके वहां पर फेंक दिया और लेकर के अशोक वाटिका में ले जाकर के लंका में रख दिया। उनको कहो अनुवाद करेगा अनुवाद
Therefore, she realized, all my problems in this sita. Therefore she went to eat Sita. And by his eye glance, Rama came to Lakshman, cut off her nose and ears. Therefore, in that deformed way, she went to her brother, Kala. Kala was like Ram's brother, cousin brother. Therefore, Kala was the Yam Gusan, and on the advice of Shukranika, they attacked Ram. Kala means ignorance. Kala also means donkey. Just like in the pastimes of Sri Krishna, there was one donkey demon named Nenagusur. Ignorance personified. He was killed by Balaram. And the same way Kala's brother Bhusan means Baal or sin. In the pastimes of Krishna, there was also one demon called Agasur, like a big snake, sin personified. So Ram alone killed Kala, Bhusan, and those 16,000 demons. Meaning that unless sin and ignorance are destroyed, the mind will not go towards Ram. So all the demons were wiped out. Supanika went back to Lanka. Then he asked, what happened? She said, I tried to do this for you because Ram, his wife, was very, very beautiful. Then Ram's mind was attracted towards her. That time, Vivasan, who was the younger brother of Ram and also a minister, said, don't do it. This Ram is not an ordinary person. Otherwise, how he could lift the bow which even 10,000 kings could not lift? Otherwise, just by the touch of his feet, he liberated Aholya from the condition of being a stone. Don't do it. But Ram said, chup, like he didn't listen to the son. So he went to Ranchi's, one demon called Village, and grabbed him. Hey, be the arbitrage, you can die by my hand or die by the hand of Ram. And the rich lord, if I die by Ravan's, no benefit. If I get killed by Ravan, at least I'll get Mogi. So he made himself into a golden deer, according to the advice of Ravan, and went there. When Sitadevi saw the deer, golden, she became attracted. Oh, Ravan, you catch him. If you catch him alive, we can keep him as a pet. And if you have to kill him, we can give the golden skin to Bharat. That's how Lakshman gave advice. This is not any demon, this is not any deer. This is one demon. And Ram said, whatever it is, I must do it. Therefore he chased the deer to a very long distance. And finally when he speared him, the deer cried out in the voice of Ram, Lakshman, save me! When Sita heard the voice, and she said to Lakshman, you should go and rescue your brother. And Lakshman said, listen, nothing has been created that can cause this pain to Ram, or to speak of killing him. This is some trick. Then Sita gave very hard words to Lakshman. I know that you are Bharat in disguise, or Bharat secret service. You want that Ram will be dead if you can capture me for your own enjoyment. If you don't go now, I will commit suicide. Then Lakshman, he was forced. He went into the forest, and he found Ram. Then Ram said, what are you doing here? Said, I had to come on the word of Sita. Before leaving, Lakshman had drawn one circle. And he said to Sita, don't step outside this circle. Then you will be protected. So when he went away, that time Ravan came dressed as a sannyasi, three lines of house here, demon. Said, hey, Bhikshamde, oh mother, give me a donation. And she said, I'll give you a donation, but I cannot come outside this line. Because when Radha went to step on the line, then he got electric shock. The Buddha says, before I mentioned times, Indian people, they knew the science of electricity. But now there's so much load shedding because they come back. So, when he stepped on the line, he got electrocuted, he could not come out. Then we said to Sita, if you don't come, I will curse you, and Radha will die. Therefore Sita was afraid. She came outside and was captured by Ravan. He called the Pushpak Viman that he'd stolen from his brother, and he went to Lanka. On the way he killed Jatayu, the vulture, and he went to Lanka.
Ab to Ramchandra ji Lakshman ko lekar जल्दी जल्दी से आश्रम में आए। देखा जी सीता जी नहीं है, एकदम व्याकुल हो गए। सीते सीते तुम कहां हो? कोई आवाज नहीं, उत्तर नहीं। गोदावरी के तट पर गए जो वहां पर पानी भरने के लिए गई होगी, वहां जाकर के देखा जो वहां पर भी नहीं है। पागल होकर के भिक्षों से पूछने लगी, इधर सीता जी को देखा, उधर गोदावरी से पूछते हैं सीता जी को देखा, और सब कभी हिरणों को देखते हैं कि तुमको तो सीता जी बड़ी प्यारी थी, उनको देखा कहीं? कोई उत्तर नहीं, एकदम पागल हो गए। आगे बढ़े, देखा जटायु अर्धमृत अवस्था में पड़ा हुआ है। आपकी कैसी दशा हुई? तो रावण सीता जी को विमान से लेकर के जा रहा था, जब ये पुकारने लगी तो मैं उनको बचाने के लिए गया, तो तलवार से उसने हमारे पंखों को काट दिया। वो हमारे लिए ऐसा किया आपने? उन्होंने कहा जब तुमको नया प्राण देकर के नया शरीर बना दूं? कहे नहीं, मेरे आंखों के सामने आप हों और आप ही का स्मरण और ध्यान करते हुए मेरी मृत्यु हो जाए, इसे और अधिक क्या। एक न एक दिन तो मृत्यु है, तो ऐसी मृत्यु भला मिल सकती है? बस रामचंद्र जी उसको सिर अपनी गोदी में रख लिया, सहलाने लगे, उसका सारा दुख जो था वो दूर हो गया, और वो भगवान का नाम लेता हुआ राम राम उनका स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ दिया। जैसे पिता का अग्नि संस्कार करते हैं, जटायु का पिता के समान में अग्नि संस्कार किया। जटायु ने उनसे कहा जी देखो, देखिए आप यहीं पर पास में सबरी का की कुटी है, आप वहां जाइए मिलिए, और उससे सीता जी का कुछ पता आपको लग जाएगा। जा कहां ले गया, मैं तो ये जानता हूं रावण ले गया है, किंतु कहां किस जगह ले गया ये नहीं मैं जानता। फिर सबरी के पास में गए, सबरी को तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से रोज फूलों को लगा करके उनको आने की प्रतीक्षा करती है, नए नए बेर और दूसरे फलों को चख करके मीठा जो होता है उसको रखती है। बहुत दिन हो गए किंतु आ जाएंगे, मेरे गुरुजी ने कहा ये जरूर आ जाएंगे। एक दिन हठात वही सीता की खोज करते 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 सबरी के यहां पर पहुंचे। सबरी देख करके आनंद में भर गई, अपने गुरुजी का जो घर था जहां भजन करते थे दिव्य ज्योति आई आ रही थी उसको दिखलाया, और इसके बाद में उनको चखे हुए मीठे मीठे फल उनको खिलाने लगी और बड़े प्रेम से खाए। फिर उन्होंने कहा जब सुना जे सीता जी की चोरी हो गई है, कहा आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, बहुत से बंदर हैं, उनसे पूछिए, वो लोग कुछ बतला सकते हैं। वहां गए, हनुमान जी से भेंट हुई और सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर लिया था, बड़े दुखी थे, इसलिए इनकी भी पत्नी की चोरी हो गई है। दोनों लोगों ने परस्पर मित्रता की, आग जला करके हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट से बाली को मारा। बाली ने कहा जी आपने हमको मारा, कौन ताक दोष किया था? अरे सीता के को खोजने के लिए सुग्रीव खोज सकता है, तब मैं तो रावण को पकड़ करके जहां भी होता उसको बगल में दबा करके सीता जी के साथ में आपको ला देता। कहे नहीं, तुम अनुज बधू भगिनी सुत नारी, जो अपने भाई के वधु को, अपनी बहन को ये सब के प्रति कुदेशी करता है, तो उसको मैं जान से मार डालता, नहीं रख सकता, तुम बड़े अत्याचारी थे। बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव ने चारों तरफ में बंदरों को भेजा। हनुमान जी अंत में सीता जी का कैसे पता लगाया, पार कर गए और समुद्र को पार करके अशोक वाटिका में विभीषण से पहले मिले। विभीषण जी ने बतलाया खोज रहे थे, छोटा सा मशक के समान रूप धारण करके एक जगह देखा, जिस सवेरे अब सवेरा होने वाला है और कोई राम राम कह करके जगा, ओ इसके पास जाए। बस उन्होंने एक रूप धारण करके ब्राह्मण जैसा और उनसे मिले, बोले आप तो परम भगवत भक्त हैं, मैं सीता जी को खोज लगाने के लिए आया हूं, आप बतला सकते हैं जो वो कहाँ है। उन्होंने अशोक वाटिका में है, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, जाना सावधानी से। हनुमान जी भी छोटा सा रूप धारण करके वहां पर चले गए, वृक्ष के ऊपर में बैठ गए। सीता जी उस समय चंद्र से आग मांग रही है, आग हमको प्रदान करो, हम उसमें जल जाए, बिना खाए पिए कपड़े बदले, वही जो दिया था अनसुईया ने जो कपड़े अलंकार उसी को धारण कर रह रही थी, वर्षा में भींगती थी, सब कुछ कठोर, किंतु सब समय राम का ध्यान करती थी। रावण उनको बतलाने के आया जैसे राक्षसियां तुमको खा जाएंगी, जल्दी से हमसे विवाह कर लो। तीर्ण की ओट दे करके उन्होंने कहा तुम बड़े डरपोक हो, राम रहते उनके सामने ले आता तब मैं समझती, ठीक है देखो तुम्हारी क्या दुर्गति होती है। हनुमान जी वो आग मांग रही थी, ऊपर से रामचंद्र की दी हुई अंगूठी को उनके अंचल में फेंक दिया, देखा जी कहां से आई। तब ऊपर से हनुमान जी उनके पास में आए, जय राम का दूत हूं, उन्होंने आपके लिए भेजा है पता लगाने के लिए, आप हमारे पीठ पर चढ़िए, आपको लेकर के चले जाएंगे। नहीं बेटा, ये मैं चूड़ामणि दे रहा हूं जय राम को दिखलाना, जो सीता आपकी सब समय चिंता करती है, प्रतीक्षा कर रही है, बस उनको खबर देना वो आकर के हमको जैसे तैसे ले जाएंगे। हनुमान जी ने लिया, फल खाने की इच्छा हो रही थी, उसके बगीचे में तरह तरह के फल थे, आम अमरूद सब तोड़ तोड़ करके खाने लगे, और सेवक लोग मारने आए, उनको भी मार पीट करके अक्षय कुमार उनका बेटा उसको भी मार डाला। अंत में मेघनाद आया, ब्रह्मा पास से इनको बांध ले गया, ब्रह्मा की बात झूठी न हो इसलिए हनुमान जी जानबूझ करके बंद हो गए। रावण के सामने ले गए, उसने कहा जे बंदरों को पूछ प्यारी होती है, जान से मत मारो, उसकी पूछ जला दो और छोड़ दो, पूछ में आग लगाई, कपड़े बांध करके किरासन तेल दे करके जब जलने लगी, हनुमान जी विकराल रूप धारण करके लंका की गली गली समस्त सोने के भवनों को जलाकर खाक कर दिया और सीता जी का आदेश लेकर के लौट करके आए। तब सुग्रीव ने बंदरों और भालुओं की सेना लेकर के किस प्रकार से पुल बांधा, इस पर आकर के रावण से युद्ध किया और सब राक्षसों को, जितने रावण के 1,00,000 नात पुत्र 1,25,00,000 नाती सबको ध्वंस कर दिया, विभीषण को केवल रखा और किसी को नहीं, और विभीषण को राज्य की गद्दी दे करके फिर पुष्पक विमान से सीता जी को उनको लेकर के आने के पहले हनुमान जी को और विभीषण को बेटा भेजा, सीता जी को ले आओ अशोक वाटिका से। वो लाने के लिए गए, जब पालकी पर लेकर के आ रहे थे, जब सेना के बीच में आई तो राम ने कहा जे उनको पैदल ले आओ, पालकी नहीं, पालकी उधर रख दो, सभी लोग उनका दर्शन करना चाहते हैं। पालकी से उतार दिया, सीता जी अब पैदल आने लगी। जब आई निकट में कहा जे वहीं पर ठहर जाओ, मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं रकुल की लज्जा बचाने के लिए मैंने रावण का संहार किया, तुम्हारे लिए नहीं, मैं स्त्री कामी नहीं हूं, तुम्हारी जोहां इच्छा हो चली जाओ। लक्ष्मण जी कहे ये क्या कह रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं, पवित्र है, बड़े बिगड़े। राम ने कहा जे तुम मेरे सेवक हो, चुपचाप रहो, उनको बंद कर दिया। सीता जी ने कहा कहीं जाना नहीं है, चिता यहां पर लगा दो और उसमें आग लगा दो, चिता बना दो, लकड़ी सजा करके रख दिया। सीता जी उस पर बैठ गई, अपने शरीर से ही आग पैदा करके आग जलने लग गई। इतने में अग्नि देवता प्रकट हुए और सीता को लेकर कहे जिसको आपने दिया था उसको अब लीजिए, असल सीता जी को उनको दे दिया। तब फिर पुष्पक विमान से अयोध्या आए, 11,000 वर्ष तक राज्य किया, 11,000 वर्ष तक। जब 11,000 वर्ष अंत होने को आया तब कुछ लीलाएं की अद्भुत। एक धोबी ने कहा मैं राम नहीं हूं, शाम को रात करके घर से आई है, अपनी पत्नी को कह रहा है निकल जाओ हमारे घर से, मैं राम नहीं हूं। वो राम के दरबार में गई किंतु राम से भेंट नहीं हुई, रात का समय लौट गई। फिर रामचंद्र जी को पता लगा कि कोई आया था फरियाद लेकर के, कहां गई वो, दूतों को भेजा पता नहीं चल सका जे वो कहां गई। किंतु रामचंद्र जी बेस बना करके प्रजाओं के इधर उधर में घूमने लगे, उन्होंने देखा जे कुछ लोग ऐसा कहते हैं सीता जी तो रावण के घर में थी तो उनका चरित्र बचा होगा, कौन साक्षी है इसका, कोई साक्षी तो नहीं। यदि देवता लोग आकर के महाराज दशरथ भी वहां पर कह गए तो हम लोग तो कोई थे नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए राम का यह काम उचित नहीं है। रामचंद्र जी ने देखा, इधर सीता जी ने भी देखा जे रामचंद्र बड़े उदास हो रहे हैं, अपना अनुचर भेज करके वो भी पता लगाई, उनको भी पता लगा जे राज्य में मेरे विरुद्ध ऐसी बातें हो रही हैं। रामचंद्र जी को उन्होंने कहा देखिए आपने प्रजाओं राज्य गद्दी के समय में प्रतिज्ञा की थी हमारी स्त्री भी होगी, प्रजाओं के लिए मैं छोड़ दूंगा, यदि आपकी बदनामी हो रही है हमको छोड़ने में मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा, आप मुझे छोड़ दिए त्याग कर दीजिए। राम जी ने कहा जे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा किंतु तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं जानता हूं तुम पवित्र। उन्होंने कहा जे नहीं, आप लोक रीति संभालिए, प्रजाओं को खुश रखिए, आपकी प्रतिज्ञा है। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा सीता जी की देखने की जंगल में ऋषि मुनियों की पत्नियों से मिलने की इच्छा है, बहुत से गहने और कपड़े ले जाओ जो सब ऋषियों की पत्नियों को उनकी लड़कियों को ये देंगी, ले जाओ बन दिखला लो। और लक्ष्मण जी से कहा जे वाल्मीकि के आश्रम के पास ही में छोड़ जाओ। तब लक्ष्मण जी बड़े दुखी होकर के उनको ले गए वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। कोई भक्त कहते हैं और अयोध्यापुरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना दोष के सीता जी को वनवास सदा के लिए दे रहे हैं, क्या वशिष्ठ जी की बुद्धि मारी गई? उन अयोध्यावासी लोगों को धिक्कार है जो किसी ने भी राम को यह नहीं कहा सीता जी ने दोष है उनको मत छोड़ो। जैसा भी हो वाल्मीकि आश्रम में छोड़ करके बोले जी आपको तो जीवन भर के लिए सीता जी को आपको छोड़ दिया है, और वो लक्ष्मण जी यह कह करके और रथ लेकर के चले गए और ये विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। वाल्मीकि जी जानते थे हमारे आश्रम में सीता जी आएंगी और आ गई हैं, बस दौड़ करके आए और पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं ये सब चीजें होने को थी, हमारे आश्रम में चलो हमारी पुत्री बन करके रहो। सीता जी को लेकर अपने आश्रम में आए और वहां पर जो रहने वाली स्त्रियों में जो मुनि ऋषि की स्त्रियां थी उन लोगों को सौंप दिया तुम लोग इसकी देखभाल करना,
उस समय सीता जी गर्भवती थी और कुछ दिनों के बाद ही में उनको जमज दो पुत्र हुए। वाल्मीकि ऋषि ने उनका कुश लेकर उसके मूल के अभाग से लव जिसको कहते हैं एक का संस्कार किया और दूसरे का दूसरे भाग से जिसको कुश कहते हैं उससे संस्कार। इसलिए बड़े का नाम लव हुआ, छोटे का नाम कुश। संस्कार करने के बाद में उसी दिन में शत्रुघ्न जी मथुरा जाने के लिए लवणासुर का वध करने के लिए आए हुए थे, उनके आश्रम में ठहरे थे। वाल्मीकि जी ने उनसे कहा सीता जी को पुत्र हुए हैं, वो भी जाकर के दूर से देखा, आशीर्वाद दे करके बतलाया नहीं मैं शत्रुघ्न हूं, छिप करके देख करके चले आए। अब कुछ दिनों के बाद में लवकुश बड़े हुए। अब बोलेगा कुछ इन वेरी ब्रीफ बिकॉज आई हैव टू टेल सो मेनी थिंग्स वेरी ब्रीफ।
So when Ram came back with Lakshman and he saw Sita was not there, she'd been kidnapped, then Ram became maddened and was crying, Sita, Sita. He was asking the trees, the rivers, the birds, the deer. Then finally he came across Jatayu, who was about to leave his body. Jatayu said, your wife has been kidnapped by Ravan. Then Ram said, if you want, I will give you a new body. And Jatayu said, no. To die before you, and Ram Nam Satyad. We can chant the name of Ram at death, but to see you personally is a rare thing. I cannot want anything superior to this. Therefore, Ram took Jatayu on his body and took away all his pain, and with his own hands he performed the ansamskar, the funeral of Jatayu. Before dying, before leaving his world, Jatayu said, you should go to Samai. She can tell you where is Sita. Therefore, you know the story of Savai. Sorry. Her guru had said, Ram will come here, but when he will come, she didn't say, he didn't say. But she knew my guru's words must be true, therefore every day she would take some fruit. That's a sweet one, I'll keep for Ram. That's a bitter one, she was control. So Ram came there, we know everything. Then Savai said, there are some monkeys on Rishabhuk mountain. They might know something about Sita. Therefore, Ram and Lakshman went there, and they met with Hanuman, who is in the disguise of Brahman. There, Ram made friends with Sugriva, and Sugriva's wife had also been stolen by his father, big brother named Bali. Therefore, they made friendship in front of, and a vow in front of the fire again. So, Ram killed Bali while hiding behind a bush. All those things you know. Meanwhile, Hanuman, because Sugriva sent all the monkeys to find out where is Sita. So Hanuman went across the ocean to Lanka. He was looking where is Sita, but he could not find. Then he heard someone chanting, Ram, Ram, Ram. He went and he found Vibhasan, the brother of Ravan. Vibhasan said, you will find Sita in the Ashok Vatika, one special garden of Ram. Ravan. Underneath that tree, Sita would not had not eaten anything. She would never change her cloth. And day and night, in the sun and the rain, she would sit there remembering Ram. Hanuman had a ring given to him by Ram. Then he threw that on Sita's cloth. Then Sita was very happy. She gave her jewel from her head as a sign that she had met, that she was waiting for Ram. Then Hanuman was very hungry. He helped himself to Ravan's kitchen. Then Ravan was very angry. He sent his son, Akshay. Hanuman finished him. Then Meghnath came, there was a big fight. Hanuman allowed himself to be captured by Meghnath, and there was a nice meeting between Ravan and Hanuman. Ravan wanted to kill Hanuman, but Vibhasan said, no, you can only torture a messenger. Ravan set fire to his tail, then put kerosene and tea on Hanuman's tail and lit it, and in 1 second Hanuman burnt the whole of Lanka to ashes. Hanuman went back, and Ravan came with all the monkey and bear army, and in that battle, Ravan, his 100,000 sons, his 125,000 grandsons were all finished. Finally, they took Sita on a palanquin to Ram. Then Ram said, she should get out of the palanquin and come here on bare feet, because so many monkeys have been killed for her, all want her darshan. So Sita got out of the palanquin and came before Ram, and all monkeys and bears had darshan with Sita. Then Ram said, I am not an asking person. I have only rescued you because you are my wife to protect my honor. Therefore I have done my duty. You may go and do whatever you want. Therefore, and I forgot to say before Ravan had kidnapped Sita, then the real Sita had entered into fire. Maybe she was kept by the fire god. And one Chaya Sita, one Maya Sita, was there. So Ravan never took the real Sita. He only took the Maya Sita. Therefore, Lakshman was ordered to build a funeral bier. He was very sad, but he could not say anything because the small brother of Ram. Sita sat on top of the wooden with a fire generated from her own body. A huge fire came up. That time the real Sita came out of the fire and the Maya Sita went back. So everyone went back to Ayodhya. 11,000 years Ram was king. Then one day one washerman, his wife had been outside the house. That washerman said, I'm not like Ram. His wife was out in the house of another guy for 11 months, but he took her back. I am not like that. That news came to Ram, and Ram was very sad. I have to maintain religious principles, that even though he did not desire, he was forced to abandon Sita. He told Lakshmi to take Sita out into the forest. She has a desire to do some service to the wives of the rishis. Therefore, when she was in the forest, then Lakshmi abandoned her in the ashram of Valmiki. That time Valmiki knows everything, past, present, future. He took Sita into his ashram, and then other rishis' wives, he put Sita with her and asked them to please serve her. That time, Sita was pregnant. Her two sons were born. Valmiki performed the Japa Samskara with himself, Kush Durva grass. The lower part of the Durva grass is called Kush, and the top part is called Love. The bottom part is called Love and the top part is called Kush. And the two sons are called Love and Kush. Sanchuna on his way to kill Lavanasur, on his way to Mathura, he also stopped in the ashram of Valmiki. Then he saw from a distance Sita and Love and Kush, but he did not tell me.
अब लवकुश कुछ बड़े हो गए तो वाल्मीकि जी ने उनका उपनयन संस्कार किया, जनेऊ दिया और फिर उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, जिसमें सारे गम पधनी ये सप्त स्वर ताल लय मान मूर्छा इत्यादि ध्रुपद इत्यादि सबकी पूर्ण रूप से शिक्षा दी। यहां तक कि वेद उपनिषद शास्त्र और सब जितने वेद के अंग हैं सबकी शिक्षा दी, 64 कलाओं की शिक्षा दी और वो लोग सीख करके इसमें बड़े पारंगत हो गए। उन्होंने लवकुश को अपना रचित वाल्मीकि रामायण, अभी रामचंद्र जी की लीला भी चल रही थी और उसी समय उन्होंने सारी भविष्य की लीलाओं का उल्लेख किया था और उसको सुस्वर से गान किया जा सकता है, बस उसका गान करना सिखलाया। इतने में एक समय अयोध्या में राम बड़े उदास रहते थे, स्वयं चटाई बिछा करके सीता जी जैसा रहते, हृदय से सीता जी को नहीं छोड़ा और जिस प्रकार से वे वन में रहती हैं, फल मूल कंद जो कुछ होता है खा करके राम उससे भी अधिक कठोर वैराग्य कर करके रहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जी भाई तो राम बहुत कष्ट सह रहे हैं, उनको परामर्श दिया है आप यज्ञ करके कुछ मन को बहलाइए, राजाओं का कार्य है, तो ठीक है अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास में गए। बोले जन गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है करो। उन्होंने कहा जे तब आप करवाइए, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। तुम सीता जी को फिर से बुला करके उनके साथ में रह करके यज्ञ करो, ये तो संभव नहीं है, फिर भी कोई उपाय कीजिए। तो तुम विवाह की इच्छा करने से हजारों स्त्रियां तुमसे विवाह करने की इच्छा रखती हैं, तो तुम विवाह कर लो। नहीं ये भी नहीं मैं कर सकता, तो फिर यज्ञ नहीं होगा। फिर भी गुरुजी आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे यज्ञ हो सके। अच्छा एक उपाय बतलाता, सीता जी की सोने की प्रतिमा बनाओ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो और उसको बाएं में रख करके यज्ञ करो, ये बहुत ठीक है। बस सोना की प्रतिमा बनी एकदम सीता जी जैसी, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अंतर था जो वो बोलती है सीता जी, ये बोलती नहीं है विग्रह वाली। उनके साथ में रह करके नैमिषारण्य में यज्ञ करने लगे। इधर में वाल्मीकि जी ने अपने दोनों शिष्यों को लौकुश को कहा, यहां पर रामचंद्र यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां पर जाकर के वाल्मीकि जो मैंने रामायण लिखा है उसका गान करो, उनको सुना करके फिर लौट आना। ये गए लौकुश दोनों, वीणा ले लिया, बड़े अद्भुत सुंदर स्वर से जैसा कि वाल्मीकि जी ने सिखाया था, आरोह अवरोह इत्यादि तरह तरह के राग रागनियों से उस रामायण का गान करने लगे। जो लोग सुने आंखों से आंसू गिरने लगे। राम लक्ष्मण सीता का वनवास सुनाया, कोई से रहा नहीं गया, सभी लोग रोने लगे और जहां वो जाए वो इसके पीछे पीछे लग जाए। दो तीन सुनाने के बाद में रामचंद्र जी ने कहा उसको मेरे सामने ले आओ राजसभा में, यहां पर माता कौशल्या हैं, कैकई हैं, सुमित्रा जी हैं और वशिष्ठ जी हैं, सब लोग हैं, उनके सामने ये रामायण गाए। लौकुश को निमंत्रण दिया, लौकुश वहां पर गए और गाने लगे रामायण का। रामचंद्र जी भी रोने लगे, लक्ष्मण भी रोने लगे, उस सभा में जो कौशल्या माताएं थी वो सभी रोने लगी वो सुन करके उनका चरित्र राम का। कौशल्या जी कह रही हैं ये दोनों लड़के जो हैं ये राम हमारे बेटे राम के समान दिख पड़ते हैं, इसको यदि बेटे होते तो जरूर ऐसे ही होते। कैकई भी कहने लगी, सुमित्रा जी भी कहने लगी ये तो राम ही के समान मूर्ति है दोनों में, वो छोटे हैं ये राम बड़ा है। उन्होंने भरत जी को या लक्ष्मण जी से कहा जे लक्ष्मण जाओ ये सोने की थाल में तरह तरह के रत्न और अलंकार और आभूषण हैं और सोने के गथे हुए वस्त्र हैं, इनको उन दोनों राजकुमारों दोनों कुमारों को दे आओ और पूछना जो तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का और माता का नाम क्या है, पूछ करके आओ। लक्ष्मण जी सोने की थाल में भर करके रत्न इत्यादि ले गए और उन दोनों से कहा बेटों तुम्हारा गान सुन करके राम और सब लोग बड़े मुग्ध हो गए, इसलिए उपहार के रूप में तुमको ये थाल भर करके रत्न सोने जवाहरात हीरात सब दिया है, इसको ग्रहण करो। उन्होंने मुझे मैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहता हूं, काफी फल है, केले अमरूद आम लीचू सब है, मैं उसी से जीविका निर्वाह हो जाती है, मुझे ये अलंकार सोने और वस्त्र से क्या जरूरत है, हम तो बलकल पेड़ों की छाल पहन करके रहते हैं, आप देख ही रहे हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है, आश्रम में क्या जरूरत, ये तुम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको रखिए। और भी प्रभावित हुए, लक्ष्मण जी ने कहा एक बात करो, तुम अपने माता पिता तुम्हारे कौन है, तुम्हारा पुत्र कौन है ये बतलाओ। उन्हें कहा जी आप तो श्री रामचंद्र जी के साथ में रहते हैं, सभी कुछ जानते हैं और तब मुझसे भी पूछ रहे हैं। आप जानते नहीं कि ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी से माता पिता का परिचय नहीं पूछना चाहिए, उनसे आपके गुरु का नाम क्या है ये पूछना चाहिए। तो मेरे गुरु का नाम वाल्मीकि है, हमारा यही मात्र परिचय है, मैं उनका, हम लोग उनके दोनों शिष्य हैं। अब तो लौट करके थाल ले गए, राम से कहा अब इसको पता लगाना चाहिए ये किसके बेटे हैं। ये लेप तो चले गए और कुछ शाम भी अधिक हो गई, सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे बेटे अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। जब आए तो उनको गोदी में ले लिया, जब गोदी में ले लिया, अरे विलंब तुमको आने में क्यों हुआ, आज मैं राजा रामचंद्र, वो नहीं जानते थे कि हमारे पिता राम हैं, आज राजा रामचंद्र अयोध्या से आए हुए हैं, उनके दरबार में मैं, हमको बुलाया गया, मैं गया और वहां पर हमने वाल्मीकि जी गुरु जी ने जो पढ़ाया है उसी का गान कर रहा था। सभी लोग सुन करके रोने लगे थे। मैया एक विचित्र बात देखी वहां, वो बात थी एक सोने की मूर्ति देखी, वो केवल बोलती नहीं थी किंतु ठीक तुम्हारे ही समान थी। सुनते ही सीता जी रोने लग गई। राम ने रानी को छोड़ा है, मुझको नहीं छोड़ा है, इसलिए हमको लेकर के ही यज्ञ कर रहे हैं। जब रोने लगी तो लौकुश ने कहा जे मैया तुम रोने क्यों लगी, तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही आंखों में राजा राम का चरित्र सुन करके मुझे रोना सा आ गया, उनको इधर उधर में भुला दिया। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि के पास में दूत भेजा, अब सचमुच में बतलाइए, सभा में आकर के ये लौकुश कौन है। लोग कहते हैं कि आपके बेटे हैं, आप कल सीता जी को लेकर के सभा भवन में पधारिए और सीता जी अपना फिर से यह प्रतिज्ञा करके बतलाएं और कोई कुछ ऐसा करें जिससे कि सबको प्रतीत हो जाए, विश्वास हो जाए सीता जी पवित्र हैं, अपने तुम निर्मल होने का कोई पहचान बतलाओ। दूत जाकर के वाल्मीकि से कहा, वाल्मीकि दूसरे दिन सीता जी को और लौकुश को साथ लेकर, सीता जी के दोनों बगल में लौकुश, उनका हाथ पकड़ करके राज्यसभा में आए। वाल्मीकि जी आगे आगे आए और बीच सभा में जब गए तो वाल्मीकि जी ने कहा देखो श्री राम, मैं प्रचेता का पुत्र हूं, जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं, मैं भूत भविष्यत वर्तमान भी जानता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं सीता जी पवित्र है, परम पवित्र है और ये दोनों पुत्र आप ही के हैं लौकुश, दूसरे के नहीं। रामचंद्र जी कुछ थोड़ी सी दूर चुप रह करके बोले सीता जी प्रमाण करें कि मैं निर्दोष हूं। कौशल्या जी कह रहे अरे तू बड़ा निष्ठुर है राम को, ये लड़के कह रहे हैं मैं तुम्हारा पुत्र हूं, ये वाल्मीकि ऋषि जी कह रहे हैं, और फिर भी तुम उनको गोद में लेता नहीं, तो बड़ा निष्ठुर है। राम कुछ नहीं बोले, सीता जी को आदेश दिया, सीता जी आगे बढ़ाई और उन्हें अच्छा मैं अंतिम प्रमाण दे रहा हूं, दे रही हूं, यदि मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी भी राम के अतिरिक्त और किसी को अपने मन में नहीं सोचा हो, स्पर्श भी नहीं किया हो, तो हे माता धरित्री देवी भू देवी, आप फट जाए और मुझे गोदी ले ले। मैं यदि सचमुच में राम ही हमारे पति हूं और मैं संपूर्ण रूप से निर्दोष हूं, हे धरित्री माता आप मुझे अपने अंदर में स्थान दे। तीन बार कहने के साथ साथ में पृथ्वी फट गई, सोने का सिंहासन निकल आया और उसमें पृथ्वी देवी बैठी थी, पृथ्वी से ही निकली है, पृथ्वी जी ही उनकी माता है। उन्होंने अंक से पसार करके सीता जी को अपनी गोद में बैठा लिया और क्षण भर में सबके देखते देखते पृथ्वी फिर जुट गई, सीता जी को पताल में लेकर के चली गई। अब तो सभी हाहाकार कर उठे, रोने लग गए। श्री रामचंद्र जी भी विलाप करते हुए धनुष उठाया, तुम मेरी सांस लगती है पृथ्वी, अभी सीता को बाहर करो, नहीं तो तुमको बाणों से छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दूंगा। वाल्मीकि जी आगे आगे, बस बस बस, इतना ही रामचरित्र हमने अभी लिखा है, इसके बाद में पीछे लिखेंगे। सीता जी तुम्हारी कहीं गई नहीं है, वो अयोध्या धाम में साकेत में बैकुंठ के ऊपर तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम लवकुश को और इनके भाइयों को जल्दी से राजगद्दी त्यागी दे करके अपने वही धाम में जाओ, सीता जी तुमको वहीं पर मिलेंगी। फिर रामचंद्र जी शांत हो गए, यज्ञ को समाप्त किया, अयोध्या लौटे, लवकुश को अपने अंक में भर ले गए और वहां पर उन लोग दोनों को राजगद्दी दे दी और भरत जी के दोनों बेटों को अलग अलग राज्य दे दिया और शत्रुघ्न जी के पुत्र को मथुरा और आसपास के सब जगहों का राज्य दे दिया और बोले जी अब हम अयोध्या में एक गोपतार घाट है वहां पर चल रहा हूं, जिसको हमारे साथ में बैकुंठ जाना है सभी आ जाओ। अयोध्यापुरी के जितने लोग थे अपने अपने पुत्रों को सब संभला करके उनके साथ में गए और रामचंद्र जी अयोध्या जब ही सरयू नदी में प्रवेश किया तो ही अपना रूप धारण करके चले गए और उसमें जो जो गया वो भी सब छोड़ करके चतुर्भुज कोई रूप कोई कुछ रूप कोई किसी रूप में सभी अयोध्यापुर के निवासी भी बैकुंठ जगत में चले गए। इति श्री रामायणम, यहीं पर रामायण की कथा हम शेष करते हैं। अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अच्छा तो जाओ ले आओ, आज 8 भी बज गया।
So one time, Ram said, Ram wanted to perform, as Sita went to the forest, then Ram also performed severe austerity, sleeping on the ground, only eating fruits and roots, just like Sita Devi. Then Hanuman, on the advice of Lakshman, Ram also wanted to perform some yajna. Therefore he requested Vishishtha Rishi, and Vishishtha Rishi said, perform yajna, you need a wife. Then you should call back Sita, you cannot do. Then you should marry again, thousands of girls will marry you in a second, I cannot do. Oh Gurudev, please give some other method. So
Vasishtha Rishi, he ordered one golden seated maid and they performed prana pratishtha. Really, there is no difference between that golden seated and the original seated. The only difference is one would speak and the other one would not speak. So Lavan Kush was sent to Ayodhya and there they began singing the Ramayana. As they were singing the Ramayana, everyone was weeping. Ram, Kausalya, Lakshman, all. That time, Kausalya Devi was thinking, these two boys look just like Ram when he was a child. Therefore, Ram called Lakshman and said, you should go and ask these two boys, what is their Gotra? Who is their mother and father? So Lakshman took a big golden plate with many jewels, golden cloth, and presented to the boys. And Lavan Kush said, after so many years with Ram, you still have not so much intelligence. We are rishis, munis, we live in the forest of the ashram of Valmiki. There is plenty of fruits and roots there. We have no need of all these things. You should keep these things with you. Who is your mother and father? He said, you should never ask a brahmachari who is their mother and father. You should only ask who is their guru. And everyone was even more astonished. Meanwhile, Sita was waiting in her ashram and Lavan Kush came later. Then she took them on their laps and they said, we went to see Raja Ram, King Ram. Lavan Kush never knew that Ram was their father. We were singing the Ramayana and how everyone was weeping, especially Ram. Then Sita also began weeping. Oh, Ram has left the queen, but he has not left Sita. So, somehow or other, the boys asked her mother, why are you weeping? But she avoided. She would not say. The next day, a messenger came from Ram. Oh, Valmiki, you should bring Sita with the two boys to Ayodhya. So when they came then Ram asked Sita one more time, please give some proof that you are pure. That time, Valmiki, he said, I am the son of the Pachetas. We never lie. I am giving proof that Sita is pure. That time, Malik Kausalya also was angry with Ram. How cruel you are. How much more evidence you want. So Sita Devi said, if I have never thought of any other man since birth, except for Ram, if I am pure, if really Ram is my husband, oh then, Earth, Goddess, Mother Earth, please give me some shelter. Three times she said, because Sita came from the earth, therefore she returned to the earth, therefore earth is one type of her mother. Mother Earth came out on a golden throne, took Sita on her lap and entered, and again the earth closed. Everyone began weeping and lamenting. Then Ram took his bow and arrow. Oh, mother-in-law, I will finish you if you don't give Sita back this instant. That time Valmiki said, Haribol, this is my lila. I have written everything in the Ramayana, but don't do anything more. Your lila is now finished. So, weeping, that was the end. Valmiki said, she is waiting for you in the eternal Ayodhya. Nityadam in Vaikuntha, there is also one Ayodhya Puri. She is waiting for you there. You will have to go there. Then when Ramchandra finished his pastimes, he said, anyone who wants to come with me, come. So everyone went to the bank of the, what's it called? Sarayu River. And all went to the, all some assumed Quran form, this form, that form. And all went as the eternal associates of Bhagavan Ramchandra. Bhagavan Ramchandra ki jai. Iti Ramayana.
Yeah.